नमस्कार। आज विजुअल बेसिक डॉट नेट के पहले यूनिट के दूसरे चर्चा सत्र में हम प्रारंभ करते हैं विजुअल स्टूडियो के परिचय के साथ। विजुअल स्टूडियो एक पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और यह एक रैपिड एप्लीकेशन टूल के रूप में बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है और काफी पॉपुलर भी हुआ है। इसके अंतर्गत कई सारी चीजों का समावेश है, जैसे ASP.NET, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, विजुअल C#, J# आदि प्रोग्रामिंग भाषाएं, हायर लेवल लैंग्वेजेस जो कि इसमें समावेशित की गई है, और इन सब को इकट्ठा करके एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाया गया है। इसके अंतर्गत समायोजन करने से सॉल्यूशन क्रिएट करने तक सारे कार्यों का उपक्रम किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं विजुअल स्टूडियो को शुरू करने की प्रारंभिक कार्य से। तो जब आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट को क्लिक करेंगे, तत्पश्चात ऑल प्रोग्राम्स में जा करके एक मेनू को प्राप्त करेंगे जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का पॉइंटर इंडिकेटर दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आप VB.NET को चूज़ करके क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपको विजुअल बेसिक की ओपनिंग विंडो, स्टार्टअप विंडो दिखाई दे जाएगी। अब इसके अंदर हम बने बनाए कोई प्रोजेक्ट खोल सकते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम करते हैं एक नए प्रोजेक्ट के निर्माण से। तो ऊपर का जो मेनू बार है उसमें से फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। जब न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो में अलग अलग टैम्पलेट्स उपलब्ध है। वो आपको पूछेगा कि किस उद्देश्य से आप ये नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। जैसे विंडोज एप्लीकेशन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर आधारित एप्लीकेशन को डेवलप करने के काम में आता है, या कंसोल एप्लीकेशन जो कि MS-DOS प्रॉम्प्ट पर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के काम में आता है, वेब कंट्रोल लाइब्रेरी, MT प्रोजेक्ट, या क्लास डेवलप करने के लिए क्लास लाइब्रेरी, या विंडोज कंट्रोल लाइब्रेरी, विंडोज सर्विसेस आदि अलग अलग ऑप्शंस यहां पर उपलब्ध रहेंगे। उनमें से शुरुआत में हम विंडोज एप्लीकेशन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज एप्लीकेशंस डेवलप करना बहुत अच्छी तरह से, बहुत सहजता से इस स्टूडियो में उपलब्ध है। तो जब हम एक नया प्रोजेक्ट विंडोज एप्लीकेशन का शुरू करेंगे तो उसके साथ हमको विजुअल स्टूडियो का जो स्वरूप दिखाई देगा उसको आप ध्यान से देखें। उसमें आपको एक फॉर्म खुला हुआ दिखाई देगा जो कि बाय डिफॉल्ट form1.vb के नाम से डिजाइन मोड में खुला हुआ आपको दिखाई देगा। यह एक विजुअल फॉर्म है जिसके ऊपर हमको इनपुट या आउटपुट के लिए जो जो कंट्रोल्स जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि यूजर को, हम यहां पर पेस्ट करके उसको डिजाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक पूरी लिस्ट दिखाई देगी जो कि टूल बॉक्स है, जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या टूल्स जो VB.NET ने प्रोवाइड किए हैं उनके लिए, सबके लिए यहां पे आइकॉन्स और उनके नाम लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो टूल आपको फॉर्म पर चिपकाना है या जोड़ना है, उस टूल को क्लिक करके फॉर्म पर जहां आप चाहते हैं वहां पर उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं और वो टूल फॉर्म पर उस तरह से पेस्ट हो जाएगा। इन टूल्स को आप रिसाइज कर सकते हैं जिस ढंग से आप चाहते हैं फाइनली इनपुट या आउटपुट के लिए फॉर्म पर दिखाना, उस तरह से उनका लुक्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पहले कि हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इस दिशा में यात्रा करें, बेहतर होगा कि हम इस पूरे एनवायरनमेंट को आईडीई को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आईडीई यानी कि पूरे प्रोग्राम के, पूरे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो जो टूल्स चाहिए, जो जो औजार चाहिए, जो जो सुविधाएं चाहिए, वो सारी इस आईडीई में उपलब्ध है। जैसे कि फॉर्म डिज़ाइनर, कोड एडिटर, टूल्स विंडो, टूल्स बॉक्स और फिर टूल्स की प्रॉपर्टीज़ की विंडो, मेनू बार, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, सर्वर एक्सप्लोरर, सॉल्यूशंस एक्सप्लोरर और उसके बाद एरर्स को देखने के लिए एरर्स लिस्ट, फिर क्लास व्यू, कमांड विंडो, इमीडिएट विंडो, आउटपुट विंडो, टास्क लिस्ट, ये सब आपको इस आईडी में दिखाई देते हैं। आईडी में एडिटर, डीबगर, इनका भी समावेश है। तो इस पूरे एनवायरनमेंट का उपयोग करके हम बहुत सहजता से शक्तिशाली एप्लीकेशंस को विकसित कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप विजुअल बेसिक के इस पेज को खोलकर एक नए प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत करें। आपके पास कंप्यूटर पर विजुअल स्टूडियो लोडेड हो और उसको चलाकर आप इन सारे आईडी के अवयवों को ध्यानपूर्वक देख ले। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। विजुअल बेसिक आपने शुरू कर लिया है कंप्यूटर पर, तत्पश्चात आप जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है उस फॉर्म पर कुछ टूल्स को हम लगाएंगे और उनके साथ कोड लिखेंगे। एक सिंपल एप्लीकेशन में हम एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर एक कमांड बटन बनाएंगे और उस कमांड बटन को क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आपका नाम और आपके लिए एक वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा। तो ऐसा करने के लिए हमको कुछ टूल्स का चयन करना होगा। कौन से टूल्स का? सबसे पहले हम एक लेबल बॉक्स बनाएंगे। तो टूल बॉक्स में से आप ढूंढ लीजिए एक लेबल बॉक्स को, उस पर क्लिक करिए और उसके बाद फॉर्म पर यानी कि स्क्रीन के बीच में एक फॉर्म जिस पर फॉर्म वन लिखा हुआ होगा उस पर उसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपको एक लेबल बॉक्स फॉर्म पर लिखा हुआ दिखेगा। चूंकि यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारे इस कार्य से एक ऑब्जेक्ट का निर्माण हो चुका है जो कि लेबल बॉक्स के क्लास से डिराइव किया गया है। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, जो कि बाय डिफॉल्ट उसने इनहेरिट की हुई है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हम बदलना चाहेंगे। जैसे अभी वहां पर दिखाई दे रहा है फॉर्म वन लिखा हुआ, इसको हम मिटाना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए उस लेबल बॉक्स पे क्लिक करिए और F5 दबाइए। ऐसा करने से उस लेबल बॉक्स की प्रॉपर्टीज की विंडो खुल जाएगी, या आप व्यू में जाकर भी प्रॉपर्टीज विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी विंडो में लेबल बॉक्स से संबंधित सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है अब, और इन प्रॉपर्टीज में कई सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बाय डिफॉल्ट आईडी ने सेट करके आपको दी हुई है। तो इनमें से लेबल बॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम ब्लैंक कर देंगे ताकि शुरुआत में उस लेबल बॉक्स पे कुछ भी दिखाई न दे। इसके साथ ही एक दूसरा टूल हम चूज करेंगे जो कि एक कमांड बटन है। कमांड बटन को ढूंढिए आपके टूल बॉक्स में और कमांड बटन को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर उसको पेस्ट करिए। जब आप फॉर्म पर कमांड बटन को पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की विंडो खोलेंगे। प्रॉपर्टी की विंडो खोलिए F5 दबा के। यहाँ F5 आपको उस वक्त दबाना है जब वह टूल सिलेक्टेड हो, यानी कि फॉर्म पर कमांड बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होगा, अन्यथा वहाँ कई सारे टूल्स हो सकते हैं, उससे संबंधित प्रॉपर्टी की विंडो खुलेगी। तो आपने कमांड बटन को सिलेक्ट किया, फिर F5 को प्रेस किया, प्रॉपर्टी की विंडो खुली। इस प्रॉपर्टी की विंडो में फिर से कई सारी प्रॉपर्टीज है। अब उसमें से जो टेक्स्ट है उसके ऊपर जो दिखाई देने वाला टेक्स्ट है, उस प्रॉपर्टी को आपको चेंज करके प्रिंट वेलकम ऐसा लिखना है, ताकि रन टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट रन हो तो वहां पर एक कमांड बटन ऐसा लिखा हुआ दिखे जिस पर लिखा हो वेलकम या प्रिंट वेलकम या वेलकम स्क्रीन, जो भी आप उचित समझे। चाहे हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल आप कमांड बटन के रूप में ही पुनः वहां पेस्ट कर सकते हैं, जिस पर आप एग्जिट या एंड लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्रक्रिया वही है, उस कमांड बटन को क्लिक करें, F5 दबाएं, प्रॉपर्टी की विंडो खुल जाएगी और उस प्रॉपर्टी की विंडो में आप उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करके वहां एग्जिट लिख दीजिए। बाकी प्रॉपर्टीज भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, फोर कलर, बैक कलर। अभी वर्जन 1 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करके इसको हम सेव कर लेते हैं। जब हम सेव करने के लिए कहेंगे तो आपसे वो प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो आप प्रोजेक्ट को उचित नाम, फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 1 या वेलकम वर्जन 1। ऐसा कोई नाम चूज करिए जिससे आप उस प्रोजेक्ट में क्या है इसका अर्थ लगा सके जब आप उस फाइल के नाम को पढ़े। तो एक कार्य पूरा हुआ प्रोजेक्ट का, कि हमने एक फॉर्मेट बनाया जो कि एक स्क्रीन की तरह रहेगा जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अब अगला जो कार्य है वह है इस प्रोजेक्ट के साथ कोड लिखने का, यानी कि सोर्स कोड लिखने का या प्रोग्राम लिखने का। अब प्रोग्राम लिखने के लिए हमको विजुअल बेसिक के सिंटेक्स का पालन करना होगा, पहली बात। और दूसरी बात, यह एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंतर्गत प्रोग्राम अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग प्रोसीजर्स में लिखा जाता है, जो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स या टूल्स के अलग अलग इवेंट्स के साथ अटैच की जाती है या जोड़ी जाती है। तो आइए हम लिखते हैं प्रोजेक्ट पहले वाले कमांड बटन के साथ, जिस पर हमने प्रिंट वेलकम मैसेज लिखा है, उसको उस प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर टूल को, कमांड बटन को डबल क्लिक करते ही कोडिंग विंडो खुल जाएगी। ट्राई डूइंग दैट। कमांड बटन 1 जो है उस पर आप डबल क्लिक करिए और उसके साथ ही एक प्रोग्राम सोर्स कोड लिखने के लिए कोड विंडो खुल जाती है। उस कोड विंडो का जो फॉर्मेट है, जो हेडर और फुटर है, वो लिखा लिखाया वहां मिलता है, जिसमें लिखा होगा उसका पूरा डिक्लेरेशन, उसके पैरामीटर्स और उस प्रोसीजर का नाम। हर टूल के साथ कई सारी अलग अलग इवेंट्स की उपलब्धता है। कमांड बटन के साथ डिफॉल्ट इवेंट जो है वो है क्लिक इवेंट। तो आप देखेंगे कि कोडिंग विंडो में दाहिनी तरफ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जिसके अंतर्गत आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ड्रॉप डाउन होगी जिसमें वे सारे इवेंट्स की उपलब्धता रहेगी जो कमांड बटन के साथ उपयोग में या प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और इनमें से क्लिक इवेंट इस वक्त सिलेक्टेड आपको दिखाई दे जाएगा। एक बार उसको ऑब्जर्व करके देख लीजिए और फिर कोडिंग के पोर्शन में कर्सर को ले आइए माउस के द्वारा क्लिक करके। अब हम क्या चाहते हैं जब रन टाइम में इस कमांड बटन को क्लिक किया जाए, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर जो लेबल बॉक्स हमने बनाया था, लेबल वन, उसके ऊपर एक मैसेज प्रिंट हो जाए, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। कैसे करेंगे? यहां पर हम कोड लिखेंगे, क्योंकि हम इस कमांड बटन पर क्लिक करने के बाद वह कार्य एग्जीक्यूट करवाना प्रोजेक्ट के माध्यम से चाहते हैं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे लेबल वन डॉट, हमने लेबल वन के रूप में वो टूल चूज किया जिसकी एक विशेष प्रॉपर्टी को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसलिए लेबल वन लिखा। उसके बाद डॉट लगाया, बिंदी लगाई, और बिंदी के बाद हम लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम, गुणधर्म का नाम जिसको हम बदलना चाहते हैं, एक नई वैल्यू देना चाहते हैं। तो टेक्स्ट नाम का उसकी प्रॉपर्टी है, यहां हम लिखेंगे टेक्स्ट। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने टी लिखा, हमारा सशक्त आईडी जो है वो उन सारे प्रॉपर्टीज की लिस्ट वहां पर ड्रॉप डाउन करवा देता है, जिसमें कि जो कि टी से शुरू होते हैं। आप चाहे तो पूरा टाइप करें टेक्स्ट, या उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को। ऐसा करते ही आपको स्क्रीन पर लेबल वन डॉट टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा। यह वो प्रॉपर्टी है जिनको हमको मॉडिफाई करना है, रीअसाइन करना है एक नई वैल्यू को, जो कि हमने डिजाइन टाइम पे ब्लैंक के रूप में असाइन, प्री असाइन कर रखी थी। तो क्या करना होगा? लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लगाइए, और उसके बाद डबल कोट के अंदर वो नया स्ट्रिंग का मैसेज लिखिए जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे आपने लिखा वेलकम टू और आपका स्वयं का नाम, डबल कोट कंप्लीट, दैट्स इट। अब इस प्रोजेक्ट को सेव करिए। एक और कमांड बटन हमने बनाया था जिस पर हमने एग्जिट लिखा था, आइए अब उसके ऊपर एक कोड को अटैच करते हैं। क्या करेंगे? उस दूसरे कमांड बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो कोडिंग विंडो खुलेगी जिसके ऊपर उसका हेडर लिखा लिखा आएगा, कमांड टू अंडरस्कोर क्लिक, ये सब लिखा लिखा, और पैरामीटर्स की लिस्ट सब लिखी लिखाई आएगी। अब उसके अंदर आपको कोड लिखना है, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है विजुअल बेसिक का जो एग्जीक्यूट होने पर यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट बहुत आसान है, एंड, ENDED, टाइप कर दीजिए एंड, दैट्स इट। अब इस प्रोजेक्ट को सेव करिए, और सेव करने के बाद अब हमने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड का डिजाइन, फॉर्म का डिजाइन कर चुके हैं। तो हमने अपने पहले प्रोजेक्ट में एक लेबल बॉक्स बनाया है और दो कमांड बटन्स बनाए हैं। दोनों कमांड बटन्स के साथ हमने सोर्स कोड को अटैच कर दिया है, हमने एक हायर लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड लिख लिया है, उसका फ्रंट एंड का फॉर्म का डिजाइन कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट? आप जानते हैं कि हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के प्रयोग में आने वाली भाषा है, लेकिन कंप्यूटर उसको सीधा सीधा रन नहीं कर सकता है। तो अब कंप्यूटर को समझने के लिए, समझाने के लिए इस भाषा का ट्रांसलेशन करना होगा मशीन लैंग्वेज में। कैसे करेंगे? कई विधियां है, अभी हम एकदम आसान विधि पर जाते हैं। ऊपर जो आइकॉन्स बने हैं आपके टूल बार के नीचे, उसमें एक एरो ना एरो की तरह दिखने वाला आइकॉन है जो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए कहने वाला है। और जब हम प्रोग्राम को रन करने के लिए कहेंगे, उसके पहले वह उसको कंपाइल करेगा। या फिर आप ऊपर के मेनू आइटम में से डीबग मेनू में जाकर वहां से डीबग को क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से भी वह प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेगा और फिर रन करेगा। तो सबसे आसान ढंग, ऊपर जो एरो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी जो प्रोजेक्ट खुला है वो प्रोजेक्ट कंपाइल होगा, लिंक होगा और फाइनली रन होगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर्स है, सिंटेक्स एरर्स है, तो आपको वो सिंटेक्स एरर दिखाई देगी। सिस्टम आपको दर्शाएगी कि इन इन जगहों पर सिंटेक्स एरर्स है। जब तक वो एरर सारी रिमूव ना हो जाए, करेक्ट ना हो जाए, प्रोग्राम सफलता से कंपाइल नहीं होगा। तो आप क्लिक करिए एरो को और देखिए, यदि एरर्स का मैसेज आए तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करिए, और नहीं आए, फॉर्चुनेटली यदि आपने कहीं कोई टाइपिंग की गलती नहीं की है, क्योंकि हमने बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, तो आप देखोगे कि आपका प्रोग्राम रन हो गया है और स्क्रीन पर आप एक फॉर्म देख रहे हो और उस फॉर्म पर दो कमांड बटन बने हुए हैं। यह अपीयरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि आप इसके पहले कई सारे एप्लीकेशंस जो कि विंडोज पर आधारित एप्लीकेशंस है, आप चला चुके हो एक यूजर की तरह। तो यहां आपको दो ऑब्जेक्ट्स, दो टूल्स, कौन से कमांड बटन्स दिखाई दे रहे हैं। उनमें से वेलकम वाले पे, जिस पे लिखा है उस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? याद करिए आपने क्या कोड लिखा था। यस, यू आर राइट, आपने वहां पर कोड लिखा था लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट में वेलकम टू आपका नाम। तो क्या होगा जब इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि वो क्लिक इवेंट पे लिखा था, जब इसको क्लिक करेंगे तो लेबल बॉक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जो आपका स्वागत करने को अधीर आतुर आपको नजर आएगा, लिखा हुआ वेलकम टू और आपका नाम। वंडरफुल, हमने बहुत छोटा सा कार्य प्रोग्राम बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, एक टूल हमने उसमें से वेरीफाई भी कर लिया है, वैलिडेट भी कर लिया है। अब दूसरे टूल को देखिए, दूसरे टूल पे लिखा है एग्जिट। पहचानिए क्या होगा यदि इसको क्लिक किया जाए तो। यस, यू आर राइट, ये प्रोजेक्ट एग्जिट कर जाएगा, यानी इस प्रोजेक्ट की रन मोड खत्म हो जाएगी और आप पुनः लौटकर vb.net की आईडी पर आ जाएंगे, क्योंकि आपने इसके अंदर सोर्स कोड लिखा था एंड, जो कि प्रोग्राम को रन टाइम के बाहर लाने का कार्य करने वाला है। कर दीजिए क्लिक। यस, द मोमेंट यू क्लिक इट, यू विल फाइंड यू आर आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बैक टू योर विजुअल बेसिक स्क्रीन। तो मित्रों, बधाई हो, आपने अपना पहला vb.net का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर लिया। अब इसके साथ हम देखते हैं कुछ और जुड़ी हुई चीजें। विजुअल बेसिक डॉट नेट यह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि इवेंट ड्रिवन एनवायरनमेंट कहलाता है। अर्थ बिल्कुल साफ है कि इसके अंतर्गत प्रोग्रामिंग अलग अलग इवेंट के साथ जुड़कर लिखी जाती है। जैसे अभी हमने देखा कमांड बटन, और कमांड बटन के साथ क्लिक इवेंट को जुड़कर लिखी हुई प्रोग्रामिंग। ऐसे ही अलग अलग इवेंट्स पर हम अलग अलग कोड लिख सकते हैं। जब यह प्रोजेक्ट रन होगा तो उस वक्त जो डायनामिकली जो भी इवेंट ऑकर होगा, जो इवेंट घटित होगा, उस इवेंट से जुड़ी हुई सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह से यहां इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीक्वेंस जो है प्रोग्राम का, उसी पर निर्धारित होगा कि यूजर कौन से इवेंट को फायर कर रहा है। ये इस टर्मिनोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे, यूजर वह व्यक्ति है जो इस प्रोग्राम को यूज करने वाला है। संभवतः वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता होगा, यानी कि उसके लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान आवश्यक प्रीरिक्विजिट नहीं होगा। और वो व्यक्ति जो प्रोग्राम बना रहा है, यानी कि आप स्वयं, उसको हम संबोधित करेंगे प्रोग्रामर के नाम से। तो प्रोग्रामर आप हो जो कि प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, और यूजर वो व्यक्ति है जिसको ध्यान में रखकर हम प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को विकसित करते हैं। हमारा एंड यूजर वो जो है वो यूजर ही है, तो उसी की सुविधा, उसी को उपयोग में ज्यादा सहजता से आ पाए हमारा प्रोजेक्ट, कम कीमत में, ज्यादा गति में, कम मेमोरी साइज में, इसी का प्रयास हम करेंगे। जो कार्य हमारा प्रोजेक्ट कर रहा है, बस वो कार्य का हो जाना पर्याप्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि कार्य को ज्यादा अच्छी तरह से करना, मोर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना, यही मूलतः प्रोग्रामिंग का उद्देश्य है। डिपेंडेबिलिटी उसकी पूरी होनी चाहिए, यानी कि उसमें एरर्स ना हो, यह भी प्रोग्राम का उद्देश्य। और यह सब कार्य एक इकोनॉमिक, ज्यादा एफिशिएंटली हम कर पाए, हमारा प्रोग्राम कर पाए, तभी वो ज्यादा पॉपुलर होगा। तो एफिशिएंसी को हम कैसे नापेंगे? एक कि वो प्रोग्राम फास्ट रन करे, दूसरा उसका साइज, उसका डिस्क साइज, उसका रन टाइम साइज कम से कम हो, और यह कार्य वो कम लागत पर कर पाए। एक ऐसा यूजर जो कि सिस्टम के प्रति बहुत जानकारी न भी रखता हो, वह भी उसको कर पाए। यह सारे उद्देश्य निहित रहेंगे हमारे अच्छे प्रोजेक्ट को, अच्छे प्रोग्राम को डेवलप करने की प्रक्रिया में। पुनः हम देखते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओप्स है, OOPS। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने बने बनाए ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। टूल बॉक्स के रूप में हमको IDE ने दर्जनों ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनकी लाइब्रेरी के रूप में पेश किया हुआ है। उनमें से वांछित टूल को सिलेक्ट करके हम फॉर्म पर पेस्ट कर रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान हम कर क्या रहे थे? उस टूल बॉक्स में जो टूल्स थे वो टेक्निकली एक क्लास के रूप में उपलब्ध थे। हमने एक क्लास को चूज किया और उससे इनहेरिट करके एक ऑब्जेक्ट को बनाया फॉर्म पर, एक टूल को बनाया फॉर्म पर, और उस टूल की प्रॉपर्टीज को हमने चेंज करके, मॉडिफाई करके उसको अपने कार्य के माफिक, कार्य के लायक, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सक्षम रूप में काम करने के लिए तैयार किया डिजाइन टाइम पे। और रन टाइम पे इन प्रॉपर्टीज को हमारा प्रोजेक्ट मॉडिफाई कर सकता है। जैसे अगर आप देखोगे कि हमने लेबल बॉक्स बनाया था और लेबल बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने ब्लैंक रखा शुरुआत में, वहां कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब यूजर द्वारा क्लिक किया गया वेलकम मैसेज वाले कमांड बटन को, तो वहां पर वो मैसेज आया, यानी कि उस लेबल बॉक्स की एक विशेष प्रॉपर्टी को हमने मॉडिफाई किया रन टाइम पर। दूसरे शब्दों में कहे तो उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को हमने मॉडिफाई किया रन टाइम पर। ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज है हर टूल के साथ जुड़ी हुई। उन विभिन्न प्रॉपर्टीज में से जो जो वांछित प्रॉपर्टीज को हम चेंज करना चाहते हैं रन टाइम पे, उनके लिए हमको कोडिंग लिखनी होती है। और कब चेंज करवाना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है कि वह सोर्स कोड हम कहां पर लिखेंगे, कहां पर यानी कि किस विंडो में लिखेंगे, कोडिंग विंडो कैसे खोलेंगे इस विंडो को, किस, ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि हम टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो विंडो खुल जाती है और एक्सप्लिसिटली हम उसी पॉइंट पर सीधा पहुंच जाते हैं जहां हमको कोड लिखना होता है। लेकिन आप देखोगे कि ये सारी कोडिंग की विंडोज जो अलग अलग दिखाई, अलग अलग ढंग से हम वहां पहुंच सकते थे, मूलतः एक इंटीग्रेटेड कोडिंग विंडो के रूप में ही जनरेट होती है, हुई है। एक ही विंडो में एक के बाद एक अलग अलग प्रोसीजर्स बनी हुई है और इन प्रोसीजर्स के नाम उस टूल पर आधारित बने हुए हैं। उस टूल के अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग प्रोसीजर के टाइटल्स बने हुए हैं, हेडर्स बने हुए हैं। तो यह सारा कार्य आईडीई जो है vb.net का बहुत शक्तिशाली ढंग से, सहजता से पूर्ण करके हमको एक एनवायरनमेंट खड़ा करके दे रहा है जिसके माध्यम से हम एक प्रोजेक्ट को सहजता से विकसित कर पाते हैं। यही कारण है कि यह एक पहला रैड टूल, RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल के रूप में जनमानस में, प्रोग्रामर्स में एक पॉपुलर स्पेस बना पाया और एक सफलता का आयाम, सफलता की एक मंजिल को हासिल कर पाया। आज हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया, उनके कुछ इवेंट्स पर बहुत सिंपल सा प्रोग्राम का कोड डाला। यह सिर्फ एक परिचय के लिए हमने किया कि कैसे vb.net का स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कार्य करता है। अब बेहतर होगा कि आप इस स्टूडियो की अलग अलग विंडोज को देख ले, कहां पर क्या सुविधाएं हैं इनको देख ले, कौन से टूल्स हैं इन पर एक नजर डाल ले, ताकि अगले लेक्चर में जब हम मिले तो हम इसके ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करें प्रॉपर्टीज के साथ, और उसके बाद फिर हम इन टूल्स के मेथड्स पर भी काम करेंगे। क्योंकि मूलतः जो क्लास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसमें ये दोनों चीजें होती है, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। हालांकि दोनों को लिखा एक ही ढंग से जाता है, टूल का जैसे लेबल 1 डॉट के बाद ही लिखी जाती है प्रॉपर्टी का नाम भी और उसके बाद ही लिखा जाता है मेथड का नाम भी। फर्क सिर्फ यह होता है कि मेथड के नाम के बाद सर्कुलर पैरेंथेसिस, गोल ब्रैकेट व जो है वो होता है और प्रॉपर्टी के बाद वो नहीं होता। तो हम देखेंगे इसके बाद कि क्या क्या मेथड्स है, वो कैसे काम करती है। लेकिन मूलतः जो क्लास है, क्लास की लाइब्रेरी है, वो मूलतः एक सांचे की तरह है। ऐसा समझे कि बिस्किट जो बनता है फैक्ट्री में, उसका एक साँचा होता है, मोल्ड होता है, बिस्किट कटर होता है, उसका महत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि सारा बिस्किट जो कैसा बनना है, उसका साइज क्या है, ये सब, उस पर क्या लिखा है, क्या डिज़ाइन बना है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर डिफाइन की जाती है। तो आज हमने देखा कैसे क्लास से कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाया और उनके साथ कोड को अटैच किया। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।